ہاں جی اچھا چلو باپ کو ہٹا دو, بیسک نالج میں ساکار میں جو گرو لوگ بیٹھے ہوتے تھے سندلی پر بھی بیٹھتے تھے کہ نہیں بیٹھتے تھے, وہاں کبھی یہ پرشن کیا کیا ہے کہ جو ساکار گرو لوگ سندلی پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے نراکاری آتما کیسے درشٹی لیتی ہے؟ کبھی پرشن پیدا ہوا؟ ارے باپ بھی تو سادھارن بن کر کے آتے ہیں نا, جیسے ہم بچے سادھارن جیون میں سادھارن کرم کرتے ہیں سادھارن پارٹ بجاتے ہیں, ویسے باپ بھی سادھارن تن میں آتے ہیں, جیسے آتما درشٹی دیتی ہے ایک دوسرے کو ویسے باپ بھی کیا کرتے ہیں بچوں کو دیکھتے ہیں, تو اس میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ساکار میں نراکار سے درشٹی کیسے لیں؟ ارے نراکار کی درشٹی ساکار آنکھوں کے بغیر ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں ہو سکتی, یہ اندر سے سمجھنے کی بات ہے نشچے بدھی کے آدھار پر. کیا کہ ساکار میں منشی شکتی کا باپ ہم کو درشٹی دینے والا نہیں ہے, کون ہے؟ جو نراکار نرنجن جنم مرن کے چکر سے نیارا ہے وہ ایور پیور باپ ہم کو درشٹی دے رہا ہے. اگر یہ بدھی میں بیٹھا ہوا ہے تو سمجھنے میں کوئی کٹھنائی تو نہیں ہونا چاہیے کہ ساکار میں آئے ہوئے نراکار باپ سے ہم درشٹی کیسے لیں. ارے روز مرے کی دنیا میں 63 جنم ہم درشٹی لیتے دیتے رہے یا نہیں لیتے دیتے رہے؟ 63 جنم چھوڑو, 84 جنم لین دین کیا, وہ تو دیہداریوں سے کیا, اور ابھی وہ باپ دیہ کو دھارن کرنے والا نہیں ہے, جس سے ہم درشٹی لیتے ہیں اس کی بدھی من بدھی روپی آتما دیہ میں دھری رہتی ہے کیا؟ جس میں پرویش کرتا ہے وہ نراکار جیوتی بندو شیو, اس کی بدھی جس دیہ میں پرویش کرتا ہے اس میں دھری رہتی ہے کیا؟ نہیں, وہ تو درشٹی سے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی جیسے کہ نہ دیکھنے کے سمان ہے, کانوں سے سنتے ہوئے بھی جیسے کہ نہ سننے کے سمان ہے, کوئی بھی کرم اندریوں سے کرم کرتے ہوئے بھی جیسے کہ اس کے اوپر کوئی بھی لیپ چھیپ نہیں لگتا ہے. آتما پر لیپ چھیپ لگتا ہے تو انوبھو تو آوے گا, انوبھو میں آوے گا یا نہیں آوے گا؟ نہیں آوے گا, آوے گا. اور ہاں جی ہاں جی
برہما کو تو مندر میں ہوتے ہیں پوجا میں ہوتے ہیں, لیکن برہما کو بھوجن کیوں کرتے
ہیں؟
برہما بھوجن,
ہاں
بھوجن کا کیوں مدد کرتے ہیں؟
جس برہما کے مندر نہیں ہوتے ہیں اور پوجا نہیں ہوتی ہے وہ برہما ادھورا ہے یا سمپورن ہے؟ وہ ادھورا برہما جو ادھورے گیان چندرما کے روپ میں دکھایا جاتا ہے وہ ودھرمیوں میں دکھایا جاتا ہے, या विदेशी बनकर आया हुआ बाप जो गुप्त रूप में पार्ट बजाए रहा है उसमें भी दिखाया जाता है, है? सिर्फ विदेशियों में ही दिखाया जाता है वो अधूरा चंद्रमा, बाप के मस्तक में भी वो अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है। इसलिए जब तक वो अधूरा चंद्रमा विराजमान है तब तक वो गुप्त पार्टधारी है या प्रत्यक्ष पार्टधारी है, क्या कहेंगे? गुप्त पार्टधारी है। वो कृष्ण रूपी 16 कला संपूर्ण ब्रह्मा बच्चा 16 कला संपूर्ण बनने तक बाप भी गुप्त रहने के लिए बंधायमान है। बाप बच्चे के बगैर प्रत्यक्ष ही नहीं हो सकता, बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। तो कृष्ण बच्चा भी है, जो अष्टदेव हैं वो भी बच्चे हैं। जैसे चंद्रमा को मस्तक पर विराजमान करके रखा हुआ है वैसे अष्टदेवों को भी मस्तक पर विराजमान करके रखा हुआ है। नंबरवार बच्चे हैं, बच्चों के बगैर बाप प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। ये विषय विषय सागर है, विषय वैतरणी नदी है, इस विषय सागर में बच्चे डूबे उतर आते रहते हैं। उस विषय सागर से निकालकर क्षीर सागर में ले जाने का बाप का काम है। तो ऐसे नहीं कि बाप पहले पहुंच जाएगा क्षीर सागर में और बच्चों को विषय सागर में ही पड़ा रहने देगा, ऐसे हो सकता है क्या? फिर तो दुनिया में भी बापों के ऊपर कोई जिम्मेवारी रहेगी है? जो दुनिया का बड़े से बड़ा बाप है वो भी ऐसा उल्टा कर्म करने लगे तो और बापों की तो कहा कहना ही क्या। ये तो है ऊंचते ऊंच बाप, जरूर ऊंचते ऊंच पार्ट बजाने वाला होगा। जो बाप अपने बच्चों को दहकते हुए घर के अंदर छोड़ जाते हैं, भाग जाते हैं, बच्चे जल जाते हैं और अपने को सुरक्षित कर लेते हैं बाप, उनको ऊंचे के ऊंचे कर्म करने वाला बाप कहा जा सकता है क्या? है? नहीं कहा जा सकता। इस बाप को तो कहते हैं ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम। नाम किस आधार पर? जरूर ऊंचे ऊंचे काम किए होंगे जिस आधार पर उस बाप को ऐसे गायन चला आता है। ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम। नाम काम के आधार पर होते हैं। ओ बाप अनेक नामों से गाया हुआ है। और दुनिया का बड़े से बड़ा खजाना कौन सा है? है? ज्ञान का खजाना है। उस ज्ञान के खजाने पर कौन चौकड़ी मार के बैठे हुए हैं? जो हमें बाप की पहचान का पूरा खजाना नहीं लेने देते। माया रूपी 5 सर्प, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो खजाने की रक्षा करने वाले हैं। वो हमें पूरा खजाना नहीं लेने दे रहे हैं। उसको तो वो तो बाप का पार्ट है, वो तो बंधायमान है, जब तक बच्चों को नहीं मिलेगा तब तक बाप भी नहीं अनुभव कर सकता। इसलिए बोला है दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार, सारी दुनिया की धुरी कौन सी हुई? दिल्ली। और जैसे दो पहियों की गाड़ी होती है तो गाड़ी किसके ऊपर रखी जाती है, सारा वजन किसके ऊपर आता है? धुरी के ऊपर आता है, धुरी माने दिल्ली प्रकृति। राइटिस्ट पार्टी भी बजाती है और लेफ्टिस्ट का पार्टी भी बजाती है। और
बाबा सबको पतित बनना ही है, लेकिन राम बाप जैसे सिर्फ टीवी आदि देखने से और उपन्यास सुनने सुनने से पतित बनना अच्छा है या कामनिका से कर्म कर्म से विकर्म करने करते करते पतित बनना अच्छा है?
टीवी में दिखाया जाता है फिल्म, और फिल्में में दिखाया जाता है पतित से पतित दुनिया के कर्तव्य। बाप कहते हैं कि मेंटेलिटी को सबसे जास्ती गिराने वाली ये फिल्म और ये आज के लिखे हुए उपन्यास हैं, जिन उपन्यासों के पढ़ने से और उन फिल्मों को देखने से सुबह से शाम तक और रात में सोते सोते भी पुरानी पतित दुनिया की स्मृति आती है या नई दुनिया की स्मृति आती है? पुरानी पतित दुनिया याद आती है। बुद्धि में एक बाप को याद करते हैं तो पुण्य कर्म करते हैं क्या? न पुण्य कर्म करते हैं न पाप कर्म करते हैं, बाप को याद करते हैं। फिर संग का रंग किसका लगता है? बाप का संग का रंग लगता है। ऐसे ही बुद्धि का संग है, संग का रंग आत्मा को लगता है। जैसा संग वैसा रंग। ये कीट पशु पक्षी पतंगे अच्छे से अच्छे प्राणी और बुरे से बुरे प्राणी, सतयुग में अच्छे प्राणी ही क्यों होंगे, कीट पतंगे क्यों नहीं होंगे? कोई कारण रहा होगा। ये संग के रंग की बलिहारी है। जानवरों को भी संग का रंग लगता है। कीट पतंगों में ज्यादा बुद्धि होती है या जानवरों में ज्यादा बुद्धि होती है? हैं? जानवरों में जास्ती बुद्धि होती है। तो आज के खूंखार जानवर वो सतयुग में सात्विक जानवर कैसे बन जाते हैं? उनको मनुष्यों के वाइब्रेशन का असर पड़ जाता है। मनुष्य का वाइब्रेशन कब बनेगा? जब सारी मनुष्य सृष्टि की मनुष्य जाति एक बाप की याद में रहने लगेगी तो याद से वातावरण बन जाता है। एवर प्योर बाप जो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला है उसके वाइब्रेशन के संग का रंग लेने वाले बन जाते हैं। तो जो नीचे से नीचे पार्ट बजाने वाले फिल्मों में दिखाए जाते हैं, उपन्यासों में पढ़े जाते हैं, उनका संग का रंग बुद्धि को लगेगा तो आत्मा नीचे गिरेगी या ऊपर उठेगी? नीचे गिरेगी। इसलिए बाप बताते हैं कि दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है और बाद में तमो प्रधान होती है। तो मुरलियों में पुराने गीत ही क्यों लिए जाते हैं फिल्मों के? क्योंकि शुरू शुरुआत में जब फिल्में भी बनी थी तो बनाने वाले और वो फिल्में और वो पार्ट बजाने वाले फिल्म में वो सब सतो प्रधान स्टेज में थे। बाद में फिल्में भी तमो प्रधान बन गई और उपन्यास भी तमो प्रधान बन गए। इसलिए बोला कि सबसे जास्ती मन बुद्धि रूपी आत्मा को नीचे ले जाने वाली फिल्म और उपन्यास है। भूल से इनको छूना भी नहीं चाहिए। और
घर में बच्चे लोग देखते हैं आंख बंद नहीं करते ना?
बच्चे ज्यादा पावरफुल हैं, उन्होंने आपकी आंखें बंद कर दी तो आपने टीवी खरीद लिया। और
है एडवांस में तो कन्याओं से भोजन बनाया जाता है।
एडवांस में कन्याओं से भोजन बनवाया जाता है,
लेकिन बेसिक में तो सभी वो भाई लोग दुर्योधन मिश्रा सिंह उधर बनाते हैं, उनको डायरेक्शन नहीं दे सकते।
बाप दादा का डायरेक्शन मुरली में होता है या जिस व्यक्तित्व की पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनते, मूर्ति नहीं बनती, उसके द्वारा डायरेक्शन होता है। बाप का डायरेक्शन मुरली द्वारा है जो मुख से सुनाई जाती है, या दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा डायरेक्शन होते हैं? मुरली द्वारा डायरेक्शन होते हैं। ब्रह्मा के द्वारा जो डायरेक्शन मिले वो तो डायरेक्शन ही ऐसे मिले। कोई बच्चे बहुत दुखी थे, परेशान हो गए, बाबा से आके कहते थे बाबा घर वालों का बहुत दबाव पड़ रहा है, हमको बहुत तंग करते हैं, रुलाए देते हैं, और हमारे माँ बाप बहुत दुखी हैं, हमको शादी करनी ही पड़ेगी बाबा। वो तो माँ का दिल था, बच्चों का रोना धोना नहीं देख सकती है, तो डायरेक्शन देते थे अच्छा बच्चे शादी कर लो। तो ये कानून के ऊपर काबिज रहना हुआ या कानून को तोड़ना हो गया? तोड़ने वाली बात हो गई। तो एक है मुखवंशावली और एक है कुखवंशावली। जो मुख के निकली हुई बात पर काबिज नहीं रह सकते थे वो ही जाकर के ब्रह्मा बाबा से पूछते थे हम मकान बनाए या न बनाए, लोन लेकर मकान बनाए या न बनाए, दुकान खोलें या न खोलें, शादी करें या न करें। तो ये कुखवंशावलियों की बात हुई या मुखवंशावलियों की बात हुई? ये तो कुखवंशावली ब्राह्मणों की बात हो गई। और बेसिक वाले क्या करते हैं, दुनिया वाले क्या करते हैं? न बेसिक वालों को भगवान बाप पढ़ाते और न दुनिया वालों को भगवान बाप पढ़ाते। हमें तो अपनी दुनिया को देखना है। ब्राह्मणों की दुनिया में वो चरित्र न होने पाए जो बेसिक नॉलेज में होते हैं या दुनिया में होते हैं। और
बाबा धर्मराज महाभारत कहानी में
है,
धर्मराज युवा खेलते खेलते द्रौपदी को भी अर्पण करता है ना, इसका मतलब क्या है बाबा?
इसका मतलब ये है कि बाप आकर के बताते हैं कि बच्चे आत्मा अभिमानी बनो, स्वचिंतन करने वाले बनो। देह, देह के संबंध और देह के पदार्थों को बुद्धि से त्यागने वाले बनो। क्या? और त्याग भी ऐसा ना हो कि बेअर्थ हो जाए, निरर्थक ना हो जाए। त्याग भी ऐसा हो जो ईश्वरीय सेवा में सहयोगी बने। तो पहली आती है बात देह के त्याग की। क्या? देह भी ईश्वरीय सेवा में अर्पण हो जाए, देह की चिंता न रहे कि भविष्य में इस देह की परवरिश कैसे होगी। फिर आगे चल बात आती है देह के संबंधियों की। देह के संबंधियों में सबसे जास्ती लगाव स्त्री पुरुष का कहां जाता है? कौन से संबंध में जाता है? पुरुष की बुद्धि में सारा जीवन स्त्री की ओर आकर्षण रहता है और स्त्री की बुद्धि में सारा जीवन काम विकार की प्रधानता होने के कारण पुरुष की याद रहती है। तो ये देह का जो मुख्य संबंध है वो नारी के मिसाल के रूप में द्रौपदी के रूप में दिखाया गया है। बाप समझाते हैं तुम सब द्रौपदियां हो। बाप ने ये जुआ खेलना सिखाया है। तन धन धाम सुहद परिवार सब की बाजी लगानी है इस जुए में। जुआ माने गैम्बलिंग। ये ईश्वरीय डायरेक्शन पर हम गैम्बलिंग खेल रहे हैं। देह को भी अर्पण कर रहे हैं, देह के संबंधों को भी अर्पण कर रहे हैं और देह के पदार्थों को भी अर्पण कर रहे हैं। इन तीनों प्रकार का अर्पण करने में कौन सा सहज है और कौन सा सबसे कठिन है?
मन बुद्धि को
जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन तो होगा ही, वो तो बात नहीं। लेकिन जो बोला देह, देह के संबंध और देह के पदार्थ, इन तीनों से बुद्धियों को हटा लेना, ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर देना। तो इन तीनों बातों में ज्यादा कठिन कौन सा है? हैं? देहभान का त्याग करना। क्या? अपनी देह की सुरक्षा का त्याग कर देना कि देह की सुरक्षा कैसे होगी अगर हम ईश्वरीय कार्य में इस तरह झोंक देंगे अपने को, तन को। देह का पालन पोषण कौन करेगा? इसके लिए बाप ने कोई गारंटी दी है? अरे दी है कि नहीं दी है? क्या गारंटी दी है? मेरे ईश्वरीय सेवा में जो बच्चे लगे रहेंगे वो बच्चे कभी भी भूख नहीं मर सकते। तो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे तो देह की चिंता नहीं करेंगे। फिर दूसरा संबंध की बात आती है। संबंध तो बता ही दिया, कौन से संबंध में जास्ती बुद्धि जाती है? पति पत्नी के संबंध में जास्ती बुद्धि जाती है, उसका त्याग करना। और फिर तीसरा देह के पदार्थ। ये पदार्थ मिलेगा तो हम ज्ञान में चलेंगे। ये थर्ड क्लास त्याग है। ये पदार्थ नहीं चलेगा तो बाप बाप कुछ नहीं, ज्ञान व्यान कुछ नहीं, रोने लग पड़ते हैं। जार जार आंसू बहाने लग पड़ते हैं। है थर्ड क्लास त्याग, ये नहीं समझते कि अष्टदेवों की लिस्ट में आने वाले तीनों प्रकार का त्याग करने में सबसे आगे होंगे या पीछे होंगे। सबसे आगे होने चाहिए। हमारी परीक्षा ही क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। काय से नष्टो मोहा? देह से नष्ट मोहा, देह के पदार्थों से नष्ट मोहा, देह के संबंधों से नष्ट मोहा। तो द्रौपदी पर दांव, द्रौपदी को दांव पर लगाने वाली बात अभी किनकी बुद्धि में आई है? वो अपने को तौलना है। आत्मा आत्मा भाई भाई बने हैं, या जिसको पत्नी समझते हैं उसकी नाक में नकेल डालते रहते हैं, नाक में दम किए हुए हैं, अगर मैं आत्मा तुम भी आत्मा, आत्मा आत्मा कौन हुए? भाई भाई। तो भाई को फ्री छोड़ना चाहिए या बंधन में रखना चाहिए? फ्री छोड़ना चाहिए। अगर बंधन में रखते हैं तो इससे क्या साबित होता है? कि अपने अंदर भी देह भान है और देह के संबंध का भी भयंकर भान है। तो पांडवों ने, तुम सब द्रौपदियां हो, चाहे पुरुष हैं और चाहे स्त्रियां हैं, सबका पद ध्रुव है। जो भी एडवांस में चलते हैं ध्रुव पद पाने वाले हैं। ऐसी द्रौपदियों ने अपने देह और देह के संबंधों को अर्पण किया है, और
बाबा माता जी पूछ रहे हैं झाड़ों में वृक्षों में आत्मा है करके पूछ रहे
हैं। मनुष्यों में भी कोई जड़ बुद्धि होते हैं और मनुष्यों में कोई कोई बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होते हैं। जो जड़त्वमयी बुद्धि वाले होते हैं वो भी बोलते हैं और चालते हैं। बोलते चलते हैं कि नहीं? ऐसे ही जो पेड़ पौधे हैं वो बोलते तो नहीं है, चलते भी नहीं है, लेकिन छोटे से बड़े होते हैं कि नहीं? है? किस आधार पर? जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सतयुग में जो होते थे जिस जिस जाति के, वो कलयुग में भी होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। सभी होते हैं या कुछ नहीं होते हैं, या कुछ की संख्या बहुत बढ़ जाती है? हैं? अच्छा, सतयुग में अक्क धतूरा होगा कि नहीं होगा? हैं? नहीं होगा। और आज की दुनिया में आक धतूरा बहुत होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सतयुग में सात्विक पेड़ पौधे होते हैं, सुखदाई होते हैं, कांटेदार वृक्ष नहीं होंगे, और कलयुग में कांटेदार दुखदाई बदबू वाले वृक्ष भी, पेड़ पौधे भी होते हैं। तो समय की प्रधानता के अनुसार जब सारी दुनिया में जलमयी होगी। तो पेड़ पौधे बचेंगे, एटम बमों के सारी दुनिया में फटाके होंगे, सारी दुनिया में भूकंप आएंगे। तो इतने मनुष्य जीव जंतु प्राणी ये सब बचेंगे क्या? पेड़ पौधे बचेंगे? अरे अकाल पड़ेगा तो ये पेड़ पौधे भी नहीं बचेंगे, सबको वापस जाना है। फिर अपने अपने टाइम पर वापस आते रहेंगे। हाँ, जो जड़त्वमयी आत्माएं हैं वो पृथ्वी के उतने ही नजदीक रहेंगी, और जड़त्वमयी से चैतन्यमयी आत्माएं हैं, सत्त चित्त आनंदमय बाप के साथ जितना ज्यादा बुद्धियोग से रहती है संगम युग में, वो उतना ही पृथ्वी के आकर्षण से परमधाम में परे की स्टेज में होंगी। पृथ्वी गोल है, गोल पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, वायुमंडल के चारों ओर स्पेस है, सूरज चांद सितारों से भरा हुआ, और स्पेस के चारों ओर परमधाम है। परमधाम में भी कुछ हिस्सा पृथ्वी के नजदीक है चारों तरफ से, और बाकी हिस्सा पृथ्वी से बहुत दूर है, परे ते परे है। सबसे जास्ती चैतन्य स्टेज में रहने वाला कौन है? सदाशिव। वो पृथ्वी के आकर्षण से बहुत परे रहने वाला है, 5000 वर्ष तक परे रहते हैं, और पांच तत्वों के आकर्षण से परे रहने के उतने संस्कार गहरे हैं कि जब इस सृष्टि पर आता है और पृथ्वी के नजदीक से नजदीक आ जाता है, धरणी माता के बहुत ही नजदीक आ जाता है, जिस नजदीकी में आने के बाद पुरुष अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, और स्वरूप को भूलने के कारण देहभान में इतने आते हैं कि हमारी कौन सी शक्ति छीण हो रही है उसका बैलेंस ही भूल जाते। परंतु वो बाप इतने आकर्षण में आता ही नहीं, सदैव आकर्षण से परे रहने वाला है। तो वो सबसे जास्ती चैतन्य शक्ति वाला है। जैसे पृथ्वी पांच तत्वों में सबसे जास्ती जड़त्वमयी है, ऐसे ही वो परमपिता परमात्मा सबसे जास्ती चैतन्य शक्ति वाला है। उसके बाद वो सारी ही शक्ति को, जितनी भी जड़ चेतन में सृष्टि है, उस सब को वो परमपिता परमात्मा घेर के रहता है, आवृत करके रहता है, उस सब से परे से परे की स्टेज में रहता है, वो किसी के परिधि में नहीं आता, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकता। उसके बाद किसका नंबर है? प्रजापिता का नंबर है। उसके बाद और 8 और 108 आत्माओं का नंबर है। उसके बाद नंबरवार मालाएं हैं। आखिरी माला है 500-700 करोड़ मनुष्यों की। फिर जड़ जीव जंतु, तो जितना जितना चैतन्य शक्ति को धारण करने वाले हैं उतना पृथ्वी के आकर्षण से परे रहने की स्टेज पकड़ने वाले हैं, और जितना जितना जड़त्वमयी बुद्धि वाले हैं वो पृथ्वी के आकर्षण से नजदीक रहने वाले हैं। तो क्या कहेंगे, जो जड़ पेड़ पदार्थ हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें आत्मा है या नहीं है? हैं? उनमें भी आत्मा है, नहीं तो पेड़ का एक जड़ काट दी जाती है, जड़ें बहुत सी फैली हुई है, किसी पेड़ की एक जड़ काट दो तो ऊपर का हिस्सा क्यों कुमला जाता है? क्योंकि प्राण है। और हाँ, सारी दुनिया शरीर छोड़ती है। हाँ,
वो छोड़ने का तो बात अलग है, लेकिन वो छोड़ने से उनका बच्चों का अनिश्चय नहीं होगा क्या? नहीं करके,
अगर उन्होंने ये समझ लिया है कि प्रकाशमणि दादी शिव की तीन मूर्तियों में से पहली मूर्ति है, तो अनिश्चय बुद्धि विनश्यन्ति की लिस्ट में जरूर आवेंगे। अगर किसी और को त्रिमूर्ति की ऊंचे के ऊंची स्टेज में समझा हुआ है तो उस पार्ट पर उनको निश्चय पहले से ही नहीं होगा। और इसलिए मुरली में बोला है, पहले ये इस्लामी तो मरे, पहले कौन मरेंगे? इस सृष्टि पर है मनुष्य, सृष्टि पर कौन से विधर्मी पहले आए? इस्लामी आए, उनके आने से देवताई सृष्टि खत्म हो गई, तो पहले ये मरेंगे, क्योंकि अब देवताई सृष्टि आने वाली है। स्थूल मौत भी मरेंगे और जीते जी भी उनको मरना पड़े, अगर बीज रूप आत्माओं में से हैं।
वो भीष्म पितामह होता है क्या? है,
वो भीष्म पितामह पहले नहीं मरते हैं, वो 6 महीने अपने को रोकते हैं। क्या? जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होगा तब तक हम शरीर नहीं छोड़ेंगे। ओम शांति। आंख से आंसू निकला और दुख के वाइब्रेशन फूट पड़े और दूसरों को भी रोना आ गया, तो ये खुशी का हलवा हुआ क्या?
प्रसन्न चित्त रहे।
हाँ, प्रसन्न चित्त रहे, कुछ भी हो जाए। और
कुमारिका दादी को बाबा ने भीष्म पितामह कहा। भीष्म पितामह,
अरे
लंबा
महारथी का भीष्म पितामह तो नहीं कहा है? नहीं, कौन सी मुरली में कहा भीष्म
पितामह?
बाबा बोले कुमार का दादी के लिए भीष्म पितामह।
मैंने किसी ने ऐसे वास्तव में प्रश्न किया भीष्म पितामह कौन है, क्योंकि बाबा ने इशारा किया कुमारी का सबसे ज्यादा ब्रह्मचर्य का व्रत किस का है?
हद की कुमारिका की बेहद की कुमारिका,
दोनों
दोनों कैसे हो जाएंगी? है
माना अगर वो भीष्म पितामह है तो वानों में सुधर में चाहिए ना, तो महाभारत युद्ध शुरू की नहीं, वो पहले शरीर शुरू
है
महाभारत की युद्ध नहीं हुआ।
जो महाभारत युद्ध होता है वो बीज रूप आत्माओं के अंदर होता है कि आधारभूत आत्माओं के अंदर फाइनल युद्ध होता है?
बाबा ने
हाँ, जो फाइनल कौन सा कहा जाएगा, गायन किसका होगा? फाइनल का गायन होगा या बीच बीच में जो हो रहा है ड्रामाबाजी उसका गायन होगा? और
बाबा अभी 8 मंच पूरे डिक्लेयर होने से तब तो आगे तो वाली चलती रहेगी क्या? गुजरात गांधी में प्रवेश करके ब्रह्मा जी या 108 तक चलेगा?
कोई यहाँ भविष्य की बातें थोड़ा ही पूछी जाती है, और ज्योतिषियों से पूछो। तो शरीर तो छूटते ही रहते हैं, शरीर छूटना कौन बड़ी बात है? आज इसका छूटा, कल उसका छूटा, परसों उसका छूटा, माने कुमारिका दादी विशेष हो गई है। ये तो कोई बात नहीं होती है, एक भूत प्रेत है कोई में प्रवेश करता है, उसका शरीर छूट गया तो क्या दूसरे में नहीं प्रवेश कर सकता? नहीं कर सकता? कर सकता है? हाँ
शिव बाबा का भंडारा भरपूर कारखंड
है। अर्थ क्या है? माने शिव बाबा के पास इतना ज्ञान है, उस ज्ञान की शक्ति से, ज्ञान की पराकाष्ठा से कोई भी काल खा नहीं सकता और कोई भी दुख का कांटा लग नहीं सकता, इतना भरपूर ज्ञान दिया है। और
गीता का भगवान कृष्ण नहीं, शिव शंकर बोले नाम है, सिद्धि का भी
है,
इससे सिद्धि का भी कोई
युक्ति तो हो गई ना। दुनिया में कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण है, और विदेशियों ने निकाला रिसर्च में कि पहले गीता कृष्णवादी साकारवादी नहीं थी, गीता निराकारवादी रचना थी। ऐसे ही ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में, हद की दुनिया में साकार ब्रह्मा और कृष्ण को गीता का भगवान मान लिया, लेकिन एडवांस में उसका अर्थ ये निकलता है कि वास्तव में दादा लेखराज साकार में कृष्ण वो गीता का भगवान नहीं है, गीता का भगवान वो है जिसका शास्त्रों में संगमयुगी कृष्ण के रूप में गायन है, जिसके पीछे कंसी जरासिंधी पड़ते हैं। तो दादा लेखराज कृष्ण है या कोई दूसरा है? कोई दूसरा है?
बाबा सत्य हरिश्चंद्र के बारे में बताते हैं कि उन्होंने अपने बीवी बच्चों को भी बेच डाला और अपने आप को भी बेच डाला, फिर भी उन्होंने शानदार का स्वाद बजाया, पर उनको तो क्रोध ही नहीं दिखाते। बाप दादा ने कहा अगर जो मैंने क्रोध आता है तो आपने आपको मैं चांदर बन रहा हूँ, मैंने समझे ऐसा कहा है।
सत्य हरिश्चंद्र की कथा कहो या सत्यनारायण की कथा कहो, दोनों हस्तियां एक ही हैं या अलग अलग हैं?
पर उन्होंने एक ही जगह में चांडाल का पाठ भी बजाया।
सुनो तो जो एक हस्ती है वो एक हस्ती सारी दुनिया का बीज है, जड़ है, तना है, पत्ता है या टहनी है, फूल है, फल है, क्या है? तो बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है कि नहीं? तो उसे चांडाल नहीं समाया हुआ?
पर उनको तो क्रोध दिखाया नहीं।
ओहो, क्रोध अगर नहीं होगा तो दुनिया का विनाश होगा नहीं होगा? वो तो सारी दुनिया का बाप है, इसलिए मुरली ने बोला दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। कोई ऐसा पाठधारी नहीं है जो पाठ तेरे अंदर न समाया हुआ हो। इसलिए गीता में बोला वृक्षों में मैं ये हूं, सर्पों में मैं ये हूं, पर्वतों में मैं ये हूं, वो हूं।
बाबा सतर्क रहो और स्वतंत्र रहने दो।
हाँ जी।
और वहाँ सत्य हरिश्चंद्र ने अपने दिल्ली बच्चों को स्वतंत्र कहाँ दिया? उन लोगों को बेच दिया उन्होंने।
है
बेच दिया ना?
वो कथा कहानी है, किसने बनाई है? है वो मनुष्यों की कथा कहानियां बनाई हुई है। और
बाबा संत को दिखाते हैं और देवकी और वसुदेव को रथ में बिठा कर वो खुद तारा भी बनकर ले जा रहा था। और आकाशवाणी ने सुना है जिसको बिठा कर ले जा रहे हो उनके आदमी कंधा तुम्हारी वध करेंगे, तो फिर वो आकाशवाणी को दंड नहीं मिलेगा क्या? भविष्य बताने की क्या जरूरत थी? आकाशवाणी को दंड नहीं मिलेगा क्या? तो वो तो अच्छा ही था जब रथ में ले जा रहा था देवकी और वसुदेव को, तो आकाशवाणी ने उसको राक्षस बनाया।
उससे पहले राक्षस नहीं था?
तो उसको रथ में क्यों बिठा था?
है
वो राक्षस होता तो
हाँ
देवकी और वसुदेव को रथ में बिठा कर बिठाने की जरूरत ही नहीं था।
देवता होता तो
रेस्पेक्ट से था वो
देवकी और वसुदेव को
हाँ
रथ में बिठा कर ले जाने की जरूरत ही नहीं।
हाँ क्यों?
राक्षस होता,
राक्षस अपने परिवारजनों को रथों पे नहीं बिठाते क्या? कोई तर्क हुआ? हाँ
आकाशवाणी बताने के ऊपर उसको तो जेल में डाल दिया ना, इससे पहले तो ऐसा नहीं किया।
अच्छा था
आकाशवाणी की है कन्या ने, जो कन्या दिखाई जाती है जो लाकर के कृष्ण की जगह पर सुला दी थी, और जिसे कन्या को कंस ने मारने की कोशिश की। क्या कंस ने क्या करना चाहा? अरे ले तेरी पवित्रता को भी मैं भंग कर देता हूं। क्या कंस क्या करता था? कन्याओं को कोसता था, तो उसकी पवित्रता को भंग करने की उसने कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो उसके हाथ से ड्रामा प्लान अनुसार छूट गई और ऊंची स्टेज में चली गई, माना एडवांस पार्टी में आ गई। जब एडवांस पार्टी में आ जाएगी तो उनकी आंखें खुल जाएंगी, नहीं अब हमारा सत्यानाश हुआ क्यों? हुआ
आई है आज आने वाली है।
अरे वो तो वैसे ही भविष्य हुआ पड़ा है, उसे पूछना क्या है? पूछना है इसका मतलब कुछ संशय है। जैसे जमुना जब नीची स्टेज में आई तो प्रश्न किया कि सारी मेहनत एडवांस पार्टी का फाउंडेशन डालने में मैंने की, और जगत की महारानी कोई दूसरी बन जाएगी? लक्ष्मी बनेगी, पार्वती बनेगी, कोई दूसरी? ऐसे ही जगदम्बा को प्रश्न आता है क्या कि सारी मेहनत हम की और बनने वाला कोई बन जाएगा दूसरा? नारी से लक्ष्मी बनाया जा रहा है दूसरे को, ये कैसे हो सकता है? झगड़ा तो सारा यही है। और
ज्यादातर देखा जाता है जो पवित्रता की धारणा करते हैं उन्हें अहंकार ज्यादा रहता है, ऐसा क्यों?
देखा जाता है ज्यादातर, इसका मतलब कोई कमतर भी है ना, कोई ऐसे भी है ना जो पवित्र रहते हैं लेकिन पवित्रता का कोई अहंकार नहीं है। और
पूरा इतिहास अहंकार पर ही आधारित टिकी हुई है, पूरा इतिहास ज्यादातर अहंकारियों पर ही टिकी हुई दिखाई
देता। अहंकारी आसुरी सृष्टि का इतिहास है या दैवी सृष्टि का इतिहास है? ये द्वैतवादी सृष्टि में होता ही अहंकार है। द्वैतवादी का मतलब ये है दो, स्व के ऊपर उतना दबाव नहीं है, देह के ऊपर ज्यादा दबाव है, तो दो का शासन हो गया। और स्वर की दुनिया में किसका शासन है? जड़ प्रकृति का देह का शासन है या देही का शासन है? देही का शासन है। वो जगदम्बा का शासन है और ये भारत माता का शासन है। त्रेता युग में आठ कलाएं रह जाती है क्या? बैलेंस देहभान का बढ़ जाता है क्या? अरे दो ही कलाएं तो कम होती हैं, बाकी छह कलाएं तो अभी भी कम होना बाकी है ना, तो कैसे बैलेंस बिगड़ेगा? जब आठ कलाएं देहभान से ऊपर हो जाएं और आठ से कम कलाएं ले जाएं आत्माभिमान की, तो तराजू है डोल जाएगा। और अच्छा पट्टी बांध ले, हाँ
न्याय की देवी को
न्याय
देवता को अंधा दिखाया जाता है क्या? वो ये नहीं देखता कि असलियत क्या है, जैसा कानून कहेगा वो देखेगा। इसलिए इस्लामी जो है वो अंधे भी है। उनको ज्ञान नहीं है।
पहले कैसे समर्पण नहीं
है?
पहले समर्पण होते हैं।
हाँ, उनमें इतना कानून रहता है, कानून को मानने का मादा ज्यादा है, उनकी मिलिट्री शासन बहुत तीखा है। उनका मिलिट्री शासन और धर्मों के मिलिट्री शासन में बहुत अंतर है। और अरे अभी तक यही नहीं जाना, सारी कथा खत्म हो गई कि जानबूझ करके आंखों पे पट्टी बांध करके अंधी कौन बन गई थी? अंदर से जानती थी कि ये भगवान है, उसका नाम गांधी और उसका नाम अरे गांधारी।
चलो
जाते हैं ना, वो सिर्फ है पुखराज इसलिए रखा जाता है कि ताकि दूसरे नगों की कीमत आंकी जा सके। पुखराज के मुकाबले और दूसरे रत्न है उनकी क्या कीमत है।
ये बाबर राशि के आधार पर बनाते हैं भैया, तेरा पुखराज चल लगेगा, तेरा नीलम लगेगा, जिस हिसाब से नाम होगा ना।
हाँ, जिस धर्म का होगा वो ही तो लगेगा उसको। और दूसरे की बात मानेगा क्या वो?
ठीक है,
दूसरे की बात मानेगा ही नहीं। वो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, दूसरी की बात मानने वाला नहीं।
बाबा बेहद के ड्रामा में भी जैसी टोना जादू वगैरह जो कुछ लगता है वो मुसलमानी धर्म की आत्माओं को लगता है, सूर्यवंशियों को नहीं लगता होगा। बेहद के जैसे ड्रामा में जो सूर्यवंशी हैं उनके ऊपर कोई जो टोना जादू करे तो उनको नहीं लगेगा, और जो वही टोना जादू जैसे मुसलमानी धर्म की आत्मा है उस पर लग जाएगा। क्या ये सत्य है?
विश्वासम फलदायकम, विश्वास होता है उसके ऊपर असर करता है, उसको विश्वास ही नहीं उसके ऊपर असर नहीं करेगा।
नटराज को जो है एक टांग पे डांस करते दिखाते हैं ना, उसका अध्यात्म अर्थ क्या है? एक टांग पे डांस करना
विनाश का काम जो है वो एक के अलावा कोई दूसरा कर सकता है?
वही टांग का मतलब वही
निवृत्ति मार्ग में रह करके डांस किया है या निवृत्ति मार्ग एक टांग पर रह करके डांस किया है?
टांग दोनों, लेकिन
डांस माने ज्ञान डांस है तो दोनों टांगे, लेकिन एक टांग को प्रैक्टिकल में लाया और दूसरी टांग को प्रैक्टिकल में नहीं लाया। तो एक टांग है डांस करने वाली, माने एक आत्मा की बात हुई ना, तो सिंगल होके करेंगे तो विनाश होगा और डबल होके करेंगे तो स्थापना होगी।
मतलब सही है, गुप्त हो जाती हूँ।
एक है उदय शंकर डांस, क्या उदय शंकर डांस भी तो है, और एक है सिंगल। तो उदय शंकर डांस क्या एक पांव पे दिखाते हैं कभी? उदय शंकर और एक शंकर का डांस, तो दोनों डांसों में ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा है?
शंकर
का एक टांग वाला डांस ज्यादा प्रसिद्ध है। तो उनका काम ही है सृष्टि का श्रृंगार करना, तो वो डांस करते हैं ज्ञान का डांस, बाकी विनाश नहीं करते, खुद उस ज्ञान डांस से प्रभावित तो हो जाते हैं। उस ज्ञान डांस से जो जड़ बुद्धि के बतौर प्रभावित तो होते हैं वो फिर दुनिया का विनाश करते हैं। इतनी बड़ी दुनिया हुई, उसमें इतने बड़े बड़े आए, धर्म पिताएं आए, महात्माएं आए, पंडित विद्वान आचार्य आए, बड़े बड़े राजाएं आए, सारी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करने की महत्वाकांक्षा वाले आए, किसी ने दुनिया का विनाश कर पाया है? नहीं, ये विनाश का कार्य सिर्फ एक ही करता है।
वह स्त्री में अशोक का नाम आता है।
हाँ जी,
अशोक ने सारे विश्व पर विजय पाने की रखी थी, लेकिन कलिंगा को पर विजय पाने के बाद वो
बौद्धी बन गया।
बौद्धी बन गया।
हाँ जी,
तो बुद्ध धर्म की आत्मा हुई।
हाँ?
बुद्ध के प्रभाव में आया।
हाँ? पहले हिंदू धर्म की थी, बाद में महात्मा बुद्ध से प्रभावित हो गई, बौद्ध धर्म की हो गई।
बाबा बेसिक में गीत लगा के याद किया जाता है बाबा को, अभी मैं एडवांस में देख रहा हूँ कि बाबा की दृष्टि में गीत चल रहे हैं।
बाबा की दृष्टि में कहाँ गीत चल रहे हैं? यहाँ गीत चला क्या? यहाँ गीत चला है क्या? यहाँ धुन चली,
आज चली।
कैसेट बनाने वाले और चलाने वाले कौन है?
धुन तो बाबा ब्रह्मा बाबा की टाइम में नहीं चलते थे।
चलो, बाबा भगत थे, जो भगत होगा वो भक्ति का काम करेगा।
ज्ञानी होगा वो भक्ति का काम क्यों करेगा, क्यों कराएगा? एडवांस में क्या ये कहा जाता है कि धुन बजाओ और लाल लाइट करो और सफेद चक्कर चारों तरफ लगाओ और फरियाद करो? बताएगा ना चलते फिरते कहीं भी आता है, आधा पौना घंटा बैठा है इसलिए जाता है कि एकाग्र चित्त हो जाएंगे तो उनकी थोड़ी ज्यादा ध्यान में समझ में अच्छी गहराई से आती है। सारा दिन याद जो नहीं करते हैं वो कम से कम थोड़ी देर तो याद में बैठे संगठन की पावर से है।
जब सारा दिन याद नहीं करते तो याद आए कि उसी आधे घंटे में दूसरी बात है क्या दृष्टि देखना टीवी टीवी में वीसीडी में जो है दृष्टि उस दृष्टि को देखना ये एक प्रकार का भक्ति का संस्कार नहीं
है? जिसकी दिल लग जाएगी चैतन्य से जैसे यार प्यार करने वाले होते हैं आशिक मासूक होते हैं जिंदगी में एक बार किसी को देख लिया और सारी जिंदगी उनको याद नहीं भूलती पूरे फिदा हो जाते हैं जिंदगी भर के लिए तो एक बार की स्मृति सदा काल के लिए स्थायी बनाई जा सकती है कि नहीं बनाई जा सकती है? बनाई जा सकती है लगन इतनी होगी तभी ना
बाबा पहले
तो ऐसा जन्मों के संस्कार ऐसे होंगे तभी तो ऐसी याद आएगी। नहीं तो चित्र गले में लटकाए फिर वो भक्ति मार्ग के गुरुओं की तरह तो भी याद नहीं आएगा।
तो मनुष्य बिगड़ने से सारे जीव जंतु बिगड़ जाते हैं
है?
मनुष्य बिगड़ने से सारे जीव जंतु बिगड़ जाते हैं तो ये मोर में ये इतने कैसे नहीं बिगड़ पाए वो मोर के अंदर जो प्योरिटी है
हाँ?
तो वो कैसे
बरकरार रही कायम रख पाया एग्जाम्पल
मोर कैसे प्योरिटी को बरकरार रखता है बाकी सब जीव जंतु तो
मनुष्य का बिगड़ने हो जाती है मोर को नहीं।
मनुष्य सृष्टि में मोर का पार्ट बजाने वाला है कौन?
ब्रह्मा बाबा।
ब्रह्मा बाबा के सर के ऊपर रखा हुआ है। तो कृष्ण के सर के ऊपर दिखाते हैं मुकुट में दिखाते हैं मुकुट है जिम्मेवारी का ताज कृष्ण नहीं है मुकुट कृष्ण अलग है और मुकुट मुकुट अलग है। तो पवित्रता की जिम्मेवारी का ताज किसने लिया? जिसने दिया वो ही मोर है। वो आखिरी जीवन में मोर बन के रहता है या सुअर बन के रहता है? मोर बन के रहता होगा
और फूल फूल पक्षी में ले आया तो फूल पक्षी में ले आया तो स्थूल पक्षी में ले आया तो
जैसे
स्थूल
जो पक्षी है मोर
जो देह में होता है वही सूक्ष्म में होता है जो स्थूल में होता है सो सूक्ष्म में होता है। ये सूक्ष्म आत्मा की बात वो है स्थूल मोर की बात
मतलब द्वापर कलयुग में भी कोई कहीं कहीं मतलब इतना देवताओं की पैदाइश होती है कहीं कहीं सब
द्वापर कलयुग में देवताएं की पैदाइश होती है
जैसे देवताएं कहते हैं ना कि 10 करोड़ शत्रु त्रेता में
है
बाकी 23 करोड़ जो है द्वापर कलयुग
द्वापर कलयुग में आकर के परमधाम से उतर करके द्वापर कलयुग में जन्म लेते हैं। अभी स्वामी रामदेव है किस धर्म के हैं ये कौन से धर्म का ज्यादा प्रचार कर रहे हैं? भारतीयता का प्रचार कर रहे हैं या
भारतीय संस्कृति
का प्रचार कर रहे हैं?
भारतीय
भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं लेकिन ऐसे नहीं कि वो उच्च कोटि की आत्मा है।
ठीक है
जब तक वो सोल प्रवेश करके काम कर रही है तब तक उनका रुतबा है निकल जाएगी गिर करा से।
इतना ओवर कॉन्फिडेंस से वो जवाब देता है तो इसका मतलब ये है आम आदमी को दे नहीं सकता ना विरोध ग्रह सोल प्रवेश है वो
हाँ जी
बाबा पहले शांति धाम की स्थापना होगी या पहले बाबा को विश्व का राजा महाराजा घोषित किया जाएगा, राजपाठ मिलेगा? तो पहले शांति धाम बनेगा माउंट आबू जी, उसके बाद बाबा को विश्व का राजा बनाया जाएगा।
शांति धाम और सुख धाम के गेट साथ साथ खुलते हैं या अलग अलग खुलते हैं?
साथ साथ खुलते हैं।
सुख धाम जो है वो बाबा कोई
एक तरफ शांति धाम और दूसरी तरफ सुख धाम
ना, राज विश्व का राज मिलना उसको सुख धाम कहा जाता है।
बाबा जो है वो विश्व का राज्य अपने हाथ में लेता है या बच्चों को देता है?
बच्चों को देता है।
बच्चों को देता है, बच्चों में जगदम्बा भी है।
बाबा जब शंकर में ब्रह्मा बाबा की आत्मा विनाश की वाणी चरण करती है तो
विनाश की वाणी ब्रह्मा बाबा की आत्मा चलाती है। जी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी, जो कल्याण का काम है वो मनुष्य आत्मा ही करती है या शिव करता है?
शिव
शिव करता है, ब्रह्मा की आत्मा थोड़ी करती है।
बाबा जैसे बाबा को ही माँ बाप कहा जाता है, बाबा को ही माँ बाप कहा जाता है।
तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हें माता च पिता तुम्हें।
लेकिन रूप पद तीन है, जैसे बाहरी माँ बाप अंदरूनी माँ बाप, जैसे बताया और जैसे भी बताया था कि बाहरी माँ बाप और अंदर के माँ बाप।
बाहरी दुनिया के माँ बाप तो लौकिक माँ बाप होते हैं?
नहीं नहीं, जगत पिता और जगदम्बा का जैसे और लक्ष्मी और नारायण का और राम कृष्ण को भी मतलब माँ बाप का पद भी दिया गया है।
तो माँ का पार्ट सहनशीलता का दुनिया में सबसे फर्स्ट क्लास पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है?
ब्रह्मा।
जगदम्बा है या दादा लेखराज ब्रह्मा है? तो जो माँ का पार्ट बजाए वो ही माँ है, इसलिए तो मुरली में बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है।
ये ब्रह्मा ब्रह्मा का पार्ट है,
है?
ये पार्ट ब्रह्मा का है।
हाँ जी, ब्रह्मा की सोल ही तो तब तो अर्धनारीश्वर का गायन है। एक ही तन में माता भी है
पिता
और एक ही तन में
पिता
भी है। ये तो पुरुष तो सारे दुर्योधन दुशासन, और दुर्योधन दुशासन परिवार की पालना कैसे करेंगे? माता है तभी तो पालना कर रही है, बिना माता की कैसे पालना होगी? वो भी ब्राह्मण परिवार की,
एक जैसे एक स्थापना में हो गया एक पालना में हो गया
है,
यानी पहला पार्ट स्थापना में हो गया दूसरा पालना में हो गया।
पालना
जैसे जगत पिता और जगदम्बा का यानी शुरुआत का यानी स्थापना की शुरुआत हुई और लक्ष्मी नारायण का पालना की
स्थापना का जो बीजारोपण हुआ वहाँ
बीजारोपण का,
लेकिन वास्तव में असली स्थापना तो 1947 में हुई जाकर ब्राह्मण धर्म की जो स्थापना है वो 1947 में हुई। ऐसे यहाँ भी है। और
बाबा भक्ति मार्ग में जब कोई इंसान प्रतिज्ञा करता है गुरु बाबा से कि 16 वर्तों की प्रतिज्ञा की थी, तो बाबा से 16 वर्तों की प्रतिज्ञा करी की थी भक्ति मार्ग में, सब ज्ञान मार्ग में नहीं थे।
16 व्रत करेंगे?
16 व्रत पूरे हुए नहीं, वो व्रत पूरे करने चाहिए कि ना करने चाहिए?
ज्ञान बैठा होगा बुद्धि में तो बुद्धि में से भक्ति मार्ग सारा उड़ जाएगा, और ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा होगा तो इच्छा होगी पूरा करके,
दो बार करने जाएंगे।
ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा तो भक्ति मार्ग उड़ जाएगा। भक्ति ज्ञान, ज्ञान भक्ति वैराग्य कहा जाता है। ज्ञान बुद्धि में आ जाता है बैठ जाता है तो भक्ति मार्ग की सारी प्रक्रियाएं उड़ जाती है, वैराग आ जाता है, सब बेकार।
बाबा 18 में कृष्ण का जन्म दिखाते हैं
और 36 दिखाते हैं,
कहते हैं 18 में कृष्ण का जन्म होगा और 36 में संपूर्ण विनाश होगा। तो फिर कृष्ण कैसे सेफ रहेगा उस विलास में जब बर्फ ही बर्फ चारों तरफ होगी।
वही तो बात अभी क्लियर की कि एक है भक्ति मार्ग का कृष्ण और एक है ज्ञान मार्ग का कृष्ण।
सतयुगी कृष्ण का जन्म 18 में नहीं होगा?
सतयुग में जो कृष्ण पैदा होगा वो सतयुग में पैदा होगा या संगम युग में पैदा हो जाएगा?
तो सतयुग की स्टार्टिंग कब से होगी?
36 के बाद।
36 के बाद दादा एक वार्तालाप में बोला है कि दूसरे धर्म के राजा ही दूसरे धर्म वो दूसरे धर्म वाले रहते हैं जो मर गए हैं 108 में नहीं है 108 में जो रहते हैं उनमें नहीं है बस जो दूसरे धर्म के राजा ही मिलती है दूसरे धर्म की राजा ही जो मिलती है वो 108 में से नहीं है।
दूसरे धर्म के राजा देने वाले वो 108 जो है ना उनमें से नहीं है।
100,000 शालिग्राम बनाए जाते हैं रुद्र के रिश्ते हैं तो वो 900,000 में से 100,000 है या लास्ट वाली या बीच वाली 100,000 है?
900,000 में से
900,000 में से फर्स्ट है जो 100,000 है वही है।
लेकिन बाकी जो 84 जो मर्दें बचे हैं तो वो कहाँ भारत में राजे करेंगे
और क्या
और तो बाकी
के सूर्यवंशी होंगे वो पूरे 84 जन्म लेने वाले होंगे उनकी राजाई पहले तैयार हो जाएगी।
तो दूसरे धर्मों के भी 108 में अलग अलग देशों में राजे करेंगे
करेंगे 8 राजाइयां स्पष्ट देखने में आवेंगी।
आठ राजा या स्पष्ट अभी संगम पर दिखाई देंगे
नहीं तो शूटिंग कैसे होगी?
हर एक धर्म के अपने अपने
तब तो अपने तो बोला और भी मालाएं बना देंगे।
बाबा जो 108 आदमी स्थिति वाले बच्चों को बाबा बचाते हैं वो दूसरे धर्म वाले ही होते हैं पूरे वंश ग्रुप के ही
जो 8 है वो दूसरे धर्म वाले हैं या सूर्यवंशी हैं? 8 की पहले बात उठाओ
सूर्यवंशी हैं।
सूर्यवंशी हैं ना ऐसे जो 108 निकलेंगे वो भी असल सूर्यवंशी भले 8 जो है वो आखिरी जन्म में दूसरे धर्म में गिरते हैं लेकिन 83 जन्म तो कौन से धर्म के रहते हैं?
सूर्यवंशी
बन के तो कौन से धर्म की कही जाएगी?
सूर्यवंशी के
108 के भी सूर्यवंशी के
108 के भी जो मन के तैयार होंगे वो भी ऐसे ही होंगे।
बाकी जो ग्रुप हैं उनकी तो 108 की माला नहीं होती
क्यों नहीं होगी? उनकी भी माला अपनी अपनी अलग 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 माला नहीं जो मुसलमान माला कैसे बनाते हैं?
एक बारी में बोल रहे 100 से कम ही होती है।
हाँ ठीक है कम ज्यादा वो बात अलग है लेकिन मुसलमानों की माला अलग होती है क्रिश्चियंस की माला अलग होती है बौद्धियों की माला अलग होती है।
मुसलमान जपते तो नहीं दिखा देते माला को?
हाँ
सूर्य मंथ और चंद्रमंथ एक ही माला है
छोटी ही छोटी सी घेरे पे छोटी नहीं दिखे
आज बड़ा भारी बुरे था जाम मस्जिद में बड़ा भारी
बाबा ये सूर्य मंथ और चंद्रमंथ की तो एक ही माला रहेगी जो 108 में से 108 ही जो है वो तो एक ही माला रहेगी सूर्य मंथ और
चंद्रमंथ सूर्यवंशियों के सामने वो चंद्रवंशी झुक जाएंगे अपने अहंकार को मर्ज कर देंगे एक ही माला हो जाएगी। जो अपने अहंकार को मर्ज नहीं कर पाएंगे उनकी माला अलग बनेगी। माया भी अपनी माला बना रही बोला कि नहीं
जो बोला है कि मन बुद्धि से जो ये माया सरेंडर होगी वो गौतम जी का तो नहीं छोड़ दिया
माया शरीर छोड़ दिया तो आधार मूर्त वाली माया ने शरीर छोड़ दिया या बीज रूप वाली ने शरीर छोड़ दिया? अरे आधार मूर्त वाले सारे ही शरीर छोड़ते जा रहे हैं नई बात क्या है?
बीज रूप वाली
काले मौत में शरीर छोड़ रहे हैं
पहले तो आप संदेश ही को तो संदेश दे रहे
कि आप डायरेक्शन कौन दे, पहले तो माया बेटी देती थी, पहले कहते ना बच्चे को तो मरना पड़ता है।
हाँ, माया बिल्ली के पुंगरे नहीं है क्या? नंबर वन, एक गुरु मर गया तो दूसरा गद्दी में बैठ जाता
है, ज्ञान की में बैठे।
अब जो भी हो
की
तो जमुना में प्रवेश करके पार्ट हो जाएंगे ना, जमुना प्रवेश करके पार्ट हो जाएंगे।
एक में प्रवेश करके पार्ट थोड़ी हो जाती है, अनेकों में प्रवेश होता है। जैसे मम्मा बाबा कोई एक में ही प्रवेश करके पार्ट हो जाती है।
मुख्य तो और एक ही होंगे ना, मेन का तो एक ही होगा।
प्रत्यक्ष होगा चलो।